राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शब्दास जी महाराज द्वारा 11 दिसंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम ऐसे अगर कोई सीखी हुई बात हो तो वैसी है। ये बात है जो कहाँ काम आती है, ये सदुपयोग कहाँ होता है, किस तरह से होता है, इस विद्या के समझने की जरूरत है। जहाँ ये बात आ जाए कि मेरे में बहुत ही निष्ठा है, बहुत ही खराब वृत्ति है, मैं क्या करूँ, निराश हो जाए, तो निराशा को दूर करने के लिए विचार है कि तुम निराश क्यों होते हो, तुम शुद्ध हो भैया, वास्तविकता तो हुआ है, उसके लिए ये कहना है। जहाँ शुद्धि का अभिमान हो जाए तो बताना है कि तुम अभिमान क्या करते हो, तुम्हारे तो बीच में दोष आते हैं, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, तो तुम्हारी शुद्धि कहाँ हुई, अभिमान किस बात का है। तो दोनों का उपयोग दो तरह से है, ख्याल में आया नहीं। और वास्तव में इसका तात्पर्य है वो कि मनुष्य ने समझ रखा है कि हमारे उपयोग से, क्रिया करने से हमारे निर्मलता आवेगी, ये एक व्यापक चीज मान रखी है। उस व्यापकता के जो भाव है, उस भाव को हटाने के लिए बात है कि ये बात है नहीं। इस वास्ते मैं ये बात कहता हूँ कि सांसारिक जैसे उन्नति होती है, वो तरीका परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। प्रायः लोगों ने एक ही तरीका मान रखा है, प्रायः सब इतनी व्यापक ये चीज है कि जैसे संसारिक काम करने से होता है, ऐसे करने से ही होगा। जैसे चीज पैदा होती है उसका कायदा है, वो कायदा ही नित्य निरंतर रहने वाली चीज के लिए लोगों ने मान रखा है। करो, करने से उपयोग कैसे होगा, ये स्वाभाविक बात है, तो उसे हटाने के लिए कहना है। तीन बात हुई, ख्याल है कि नहीं। एक
जो कल्याण चाहता है और अपने विकारों को दूर करना चाहता है, उसके लिए तो ये बात है।
दूसरी बात ये बताइए, नित्य शुद्ध बुद्ध मूर्त मान कर जो अभिमान हो जाए ना, तब तो बताने के तुम अभिमान कैसे करते हो, तुम्हारे दोष है। और इन अवगुणों के कारण से हताश होकर के दब जाएगा, हमारा तो ठीक नहीं होता, तो उनको बताना है कि तुम निर्दोष, वास्तव में दोष तुम्हारे नहीं है, दोष आगंतुक के प्रत्यक्ष अनुभव है, ये तो हमारे ठीक तरह से नहीं होता। ये जो आपका प्रश्न है, मन व्यवहार मन दोष आते हैं, तो ये जो बात है, तो व्यवहार में दोष आते हैं, इसमें समझने की बात है खास कि दोष आते और जाते हैं, निरंतर रहते हैं क्या, वो दुनिया का प्रश्न है। उस भाई से कहना है कि आप जो पूछ रहे थे भी दोष हमारे व्यवहार में आते हैं, तो आप ये बताओ कि दोष हरदम रहते हैं क्या, भूतकाल के दोष को वर्तमान में मानकर ये बोलते हैं मेरा क्रोध स्वभाव है, तो बार क्रोध है क्या आप में, मेरे को तो लोभ स्वभाव है मेरा, तो अबार लोभ है क्या, मान दोषों की निरंतर स्थिति नहीं होती, निर्दोषता निरंतर रहती है। मनुष्य को उत्साह पूर्व परमात्मा तत्व की तरफ चलना चाहिए, उसके लिए ऐसी बातें है ये। मन तुम ख्याल करो तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम कहाँ हो, किसके हो, तुम्हारा घराना कैसा है, तुम वास्तविकता क्या है, ये समझाने जिससे कि उनका उत्साह होकर ऊंचा बढ़े। अरे वास्तविक बात है ये कोई केवल कहने के लिए नहीं है, अनुभव करनी चाहिए इस बात को। तो कैसे अनुभव करें, तो अनुभव ऐसे करें कि वास्तव में नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, सिद्धांत है ये। दो तरीका है, एक तो बनाना निर्माण करना, बनाते बनाते बनेगा, और एक बनाना नहीं है चीज उसको प्राप्त करना है। तो है इस बात के बताने के लिए ये विषय है। ठीक आ गया क्या है नहीं है
वो बताए महाराज जी, तब होगा।
नहीं आपके देखो नहीं तत्व का अनुभव तो हो जाए, साधन में लगते समय आपके भीतर में धारणा क्या है कि वास्तव में दोषों की सत्ता स्वतंत्र है क्या, हम प्रश्न करते हैं आपसे, आप दोषों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं क्या? नहीं मानते ना, तो ये बात बताने का तात्पर्य है। वो जो ये कहना कि दोष नहीं है, इसका तात्पर्य है कि दोषों की स्वतंत्र सत्ता आप मत मानो, ये है नहीं। अब आते हैं तो आपकी सावधानी कम है, दोष कहाँ है कि हमारी सावधानी कम है, और सावधानी ही साधना है, साधना सावधानी का नाम है। तो सावधानी कम रहने से दोष आते हैं, तो ये कह देंगे निर्दोष तो है, फिर दोष हमारे में कैसे आते हैं भाई, और दोष तो
महाराज जी निर्दोषता है स्वतः सिद्ध है ऐसा तो मान लिया, और दोष घटित होते रहते हैं, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी क्या?
ना होगी, नहीं होगी,
यही बात थी ना,
नहीं होगी, दोष घटते रहते कैसे हो जाएगी। तो इसमें पहले भी कह दिया कि ये जो निर्दोष तत्व है ये आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए है, निराश न हो जाए इस तत्व से, उस निराशा को मिटाने की तात्पर्य से कहना है ये। ये संतोष करने में तात्पर्य नहीं है कि दोष घटते रहे हम पूरे हो गए, ऐसा इसके लिए नहीं है, इसलिए निराश हो जाता है ना। मैंने दो बात कह दी, साधक के दो तरह की वृत्ति होती है, एक तो दोष बार बार घटने से आदमी निराश हो जाता है, भाई ये तो झंझट नहीं होगा, हमारा तो होगा ही नहीं, फिर छोड़ देते ये हमारे होने वाला है नहीं। और इस छोटे में इतनी लक्षण बात है कि पुस्तकों में लिख दिया कि राग द्वेष नष्ट नहीं होते, संतों की वाणी में होता कि नष्ट होता ही नहीं। मेरे तो बहुत काम पड़ा है इस विषय में, इस विषय में प्रश्नोत्तर करने का बहुत काम पड़ा है। संतों की वाणी लेकर चलते हैं, वे कहते हैं कि ये नष्ट होते ही नहीं, होते ही नहीं, कभी किसी के नहीं हुए, भगवान के नहीं हुए, संतों के नहीं हुए, सब हो गए, साप दे दिया, दादाजी के नहीं हुए, संगादी को भी नहीं हुए, किसी के नष्ट नहीं होता,
संगादिकों के नहीं हुए,
कहाँ हुए तो साप दे दिया ना, कहाँ हुए नष्ट हो गए तो साप क्यों दिया। भगवान के दो कारद्वार पालक थे, उनको साप दिया तो राक्षस बन गए, वो क्योंकि नष्ट हो गए तो साप नष्ट दिया। ऐसी सिद्धि करते हैं और जल्दी प्राप्ति हो जाए इसका निषेध बहुत व्याख्यानों में कथाओं में कहते जल्दी होने की बात है ही नहीं है। खास पूछो तो हमारे शिवारायण महाराज के यही खास बड़ा मतभेद था, समझ में नहीं होता जल्दी होता ही नहीं होगी देखे तो उठे देखे तो बोली है उनका कहना है साहब। निर्विकार हुए हुए सिद्ध हुए पुरुषों का कोई समुदार टोली की टोली दिखते तो नहीं, फिर कैसे कह दिया कि जल्दी हो जाए। शिवराज मन बात होती है जोर से बताओ, तो इसमें कौन सी बात ठीक है। सेठ जी कहते थे रोगी आदमी है उसको कहा जाए भी ये रोग है ये मिटेगा ही नहीं, और एक आदमी कहते थे ये उसको मिट सकता है, तो हम किस बात को माने। रोगी इसी बात को माने वो ठीक है ना, बात वैसी बात ही हो रही वही बरसात हो रही तो मिटता ही नहीं, ये बात ही होने पर भी रोगी को कौन सी बात का आदर करना चाहिए कौन सी बात माननी चाहिए। तो मिट्टी चाहिए बताओ वो ठीक है ना, तो ऐसी मानना चाहिए जो निराश हो वो निकल लिए और अभिमान करें उनके लिए वो नहीं है। ये तो मेरे बहुत पहले बात पूछी शेठा से पूछी हुई बात है, शेठ जी से बात पूछी हुई है, मेरे बहुत इस पर प्रश्नोत्तर हुए हैं, पुस्तका है इस बार खूब अच्छी तरह से और विवेचन है ऐसी तरह से। बताओ कर्पात्री महाराज के भी ये जची हुई थी कि दोष नहीं मिटते, मिटते नहीं इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तो ये उठना भस्मागत्य तो ऐसे परिपंथी न हो, राग द्वेष तो व्यवस्थित है ठीक व्यवस्था से स्थित है ही, ये मिटते है ही नहीं कभी नहीं मिटते। बोलो ये कैसे मिट जाते हैं, व्यवस्थित है तो व्यवस्थित है किस व्यवस्था से स्थित है, व्यवस्था माने अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये है खास व्यवस्थित का अर्थ। अनुकूलता को लेकर राग है प्रतिकूलता को लेकर द्वेष है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का लेकर व्यवस्थित है बात तो यही है, वो कितने व्यवस्थित है रहते ही है सदा रहेंगे तो व्यवस्था है नहीं, सब भगवान ने कहा है। अब आप बताओ कि आपकी मान्यता में ये है क्या राग द्वेष घटते हैं तो हम कैसे निर्दोष माने, ये ठीक है क्या है। आपने जितने बोले हम 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 नहीं मिलाने, हम हम मिलाने से फायदा नहीं है, मैं कहूं जैसे हम हम मिला दिए क्या फायदा पड़े, अपने हृदय में जैसी जची हुई है वो बात कहनी चाहिए जिससे अपने खुलासा हो जाए अपने लाभ हो जाए, तो निर्दोषता कैसे मान ले जब तक दोष हमारे दिखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव हमारे दोषों को हो रहा है, अब दूसरी कैसे कैसे ये बात मान लेंगे दोष नहीं है, यही तो बात है यही है ना। तो इसमें आपकी मान्यता में क्या दोषों की स्वतंत्र सत्ता है, इस ऊपर मेरा ये प्रश्न करने में दोष स्वतंत्र है सत्ता है दोषों की, आपकी मान्यता में दोष ऐसे मजबूत है जैसे परमात्मा है ऐसे दोष भी है, जैसे परमात्मा की सत्ता है ऐसे दोषों की सत्ता है, दोष तो है क्यों आते हैं रहते हैं हम देखते हैं अनुभव होता है हमारे, बस नहीं है
परंतु ये वहाँ पर बंदा था कि हम साधक बराबर साधना के में है और लगे हुए हैं, और अभी अभी जैसे प्रश्न होता है अभी तो बात समझ में आ गई और फिर बाद में तत्व की अनुभूति बराबर स्थिर इसकी स्थिति नहीं बनी रहती है।
स्थिति नहीं बनने में वो सिद्धांत की कमी है तो अपने उद्योग की कमी है,
अपने उद्योग की कमी है।
तो इसमें प्रश्न कैसा फिर तो कहना चाहिए कि कैसे दूर हो।
तो हमारा ये है कि जो हम गलती करते आ रहे हैं जिन दोष के कारण हम उछिप जाता है वो दोष भी करते रहते हैं, फिर इसको हम जानते रहते दोषों को माने हमको हटा देना है, अपने से हटाना है, जैसे झूठ कपट बेईमानी भक्ष भक्ति जो नहीं करना चाहिए उसको करते रहते हैं। तो हमको लगता है कि ये जरूर है, इसमें कारण है कि जो हम करना नहीं चाहिए उसको भी करते रहते हैं, इसलिए उससे
अर्जुन ने पूछा ही है ऐसा कहना प्रयोग पापन सभी न चाहता हो अभी मनुष्य पाप क्यों कर लेता है, पूछा है अर्जुन ने। तो ये तो प्रश्न है खास कि चाहता है और पाप करना नहीं चाहता और फिर भी पाप कर देता है, तो पाप कराने वाला कौन है? वो जबरदस्ती कोई प्रारब्ध है, प्रकृति है, ईश्वर है, कौन कराता है पाप? अर्जुन का प्रश्न यही तो है। तीसरा अध्याय 36वां में यही प्रश्न आपका है,
यही शंका है कि हम जिस दोनों को जानते हुए भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, इसी उसका अस्थायी तो नहीं आता है।
जानने का अर्थ क्या है? अनुभव है आपका, एक जानना हुआ सीखा हुआ, एक जानना अनुभव। हाँ, तो आप जानते हैं वो अनुभव है कि सीखा हुआ जानना, कौन सा जानना हुआ है? आपके जानने का अर्थ क्या है? सीखी हुई बात को जानना कैसे है कि अनुभव करने को जानना कैसे है? अनुभव। तो अनुभव हो जाए तो फिर दूसरे कैसे आ जाएगा? ये यही गलती है, अनुभव नहीं है, सीखी हुई बात है केवल। सीखी हुई बात काम नहीं करती। बड़े दार्शनिक पंडित हो, वेदों के शास्त्रों के पंडित हो तो राजस्व मिट जाता है क्या? सीखने में कमी नहीं होंगे तो सीखा हुआ और चीज है, जाना हुआ और चीज है। दो विभाग है, जानने का विभाग अलग है, सीखने का विभाग अलग है। तो मेरा मतलब सिखाने का नहीं है, मेरी दृष्टि रहती है, मेरा उद्योग रहता है, मेरा प्रयत्न रहता है अनुभव कराने का। हाँ, हमारे विचार ऐसा रहता है। तो अनुभव कराने में उनको खुद को ये अनुभव हो जाना चाहिए कि भाई ये बात वास्तव में तो निर्दोषता की यही सच्ची है, हमारा उद्योग कम है, हमारी युक्ति कम है, हमारा पुरुषार्थ कम है, हमारा विवेक कम है, कुछ न कुछ कहाँ गलती है। पहले जैसे एक पहाड़ पर मंदिर है, उस मंदिर में जाने के लिए दो तरह का रास्ता है और उस जाने के लिए दो तरह का उपदेश है। तो एक तो उपदेश यह है कि वहां जाना है वो ध्यान में रखो, अब यहां से चलो, एक बात तो यह है। अब वो चलने वाले के दो तरीका है, एक तो सड़क और जाना होता है, एक जंगल के रास्ते जाना होता है। तो जंगल का रास्ता ठीक है कि सड़क का रास्ता ठीक है? तो सड़क जाना है वो देरी लगेगी, सड़क यू उसी जाना ही जाना होगा। वो तो कौन सा रास्ता ठीक है? जंगली आदमी के लिए तो सीधा रास्ता बढ़िया है। अब उसने क्यों घूमा, क्यों करे, यू कितना लंबा पड़ेगा? सीधा ही उगड़ा पकड़ा पकड़ा, डाली पकड़ी, कटी वृक्ष पड़ा, कटी पत्थर पकड़ा, किसी ऊपर से चट चट पहुंच गया। चंद्री आदमी स्वर्ण में दुख पावे गया और शहर का आदमी पता चलना सकता नहीं तो उसका सड़क में वो चढ़ नहीं सकेगा। रास्ता तो दोनों है और दूसरा प्रकार वो है कि वहां जाना है, ये प्रकार पहले लक्ष्य पर आ जाए पीछे यहां से चले, या दो तरीका है, अलग अलग तरीका दोनों। तो पहले लक्ष्य का मालूम हो जाए, उस लक्ष्य के लिए ये कहना है कि तुम्हारे निर्दोषता स्वतः है, उस निर्दोषता है स्वतः सिद्ध, इस बात का आपके निस्संदेह अनुभव जाना चाहिए। बात बात में अनुभव, पूरा अनुभव न हो न सही, निर्विकारता का अनुभव न हो, परंतु युक्तियों से शास्त्रों से ये निश्चय हो जाए कि भाई वास्तविक जो स्थिति है वो तो स्वतः है। मेरे कहना तात्पर्य इसमें है कि आदमी ख्याल में जो साधन करते हैं ऐसे साधन का कुछ बना है उनकी बहुत जल्दी सिद्धि होती है इसमें। क्या जो लोग साधन करते हैं जो समझते हैं, दूसरी बात एक और है, एक विवेक प्रधान है और एक क्रिया प्रधान है। तो क्रिया प्रधान में लगे हुए हैं उनका प्रश्न होता है ये आप कैसे हो, कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। शिवानंद महाराज जत्ती नहीं ये बात कि जल्दी हो सकता है फिर सके, मेरे लिए जस्ती नहीं कि देरी लगती है, जस्ती नहीं चाहे मेरी स्थिति न हो। मैं नहीं कहता मेरी स्थिति हो गई मैं तो सिद्ध हो गया, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पर मान्यता में बात ऐसी कि बड़ी सीधी है, बात सरल, वास्तव में तत्व है वो निर्विकार है। तो साधक के लिए इसको मैं उचित ज्यादा समझता हूं, आपको मैं बताऊ कैसी बात है। मानो ये अनुभव नहीं आती है तो अनुभव नहीं आने से हम कैसे मान रहे हैं कि निर्विकार है, उसे कैसे मान रहे हैं, नहीं मानना चाहिए, हम थोड़ी कहते मान लो। परंतु तत्व क्या है वास्तव में कठिन ही है, सुगम है तत्व वास्तव में, वह वस्तु क्या चीज है उसमें बोलो। मैंने उसे बहुत बातें कही है, मैं तो एक तरह से है निराश में होता नहीं हूं, नहीं तो मेरे सामने निराश हो जैसा अवस्था है मेरे सामने, इतना वर्ष जो बोलते हैं तो बिल्कुल लोगों के दशा देते हुए निराश होना पड़ता है कि भाई ये जल्दी नहीं होता सिद्ध, इस देर से ही होगा, जल्दी धीरे धीरे करते 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 होगा। परंतु मैं निराश नहीं हुआ हूं, मैं निराश मैं जल्दी ही नहीं निराश कर सोचा। दो तरह की बात है, एक तो निर्माण होता है एक अन्वेषण होता है। अब कितनी तरह से कहूं मैं बात, आप कौन सी लागू हो गई, आप शंका करो तो मैं बार पकड़ लूंगी ये बात यहाँ है, अब नहीं शंका करो मैं कैसे पकड़ू, तरह तरह बात कह दी। एक अन्वेषण है और एक निर्माण है, सरल भाषा में कहूं तो एक तो खोज है और एक बनाना है। बनाने में चीज नहीं बनती है, खोज में नई बनती नहीं है, पुरानी है जो मिलती है। तो पारमार्थिक सिद्धि है जो मिलती है इनको बनानी पड़ती है। बोलो परमात्म स्वतः सिद्ध है, तो फिर आप वाला प्रश्न मैं करता हूँ कि स्वतः सिद्ध है तो विकार क्यों आते हैं, अब बताओ इसको। तो स्वतः सिद्ध है उसको समझ लिया फिर विकार कैसे आते हैं।
विकारों को मैंने पहले से अपना लिया है, पहले से उसको हम करते आए हैं, जो विकार है उसमें, उसकी अनुभूति में जो विकार है उसको हम करते आ रहे हैं, इसलिए उसकी स्वतः सिद्धि।
तो विकार करते आते तो विकारों की शौक है क्या? विकारों की शौक है आना से आई है?
नहीं, शौक तो नहीं है।
तो फिर क्यों आते हैं?
हो सकता है संस्कार,
तो इस वास्ते स्वतः निर्विकार सा है, ये बात नहीं जस्ती। दृष्टि है ना, तो फिर संकल्प अब प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या है आपका? अब प्रश्न पूछो, अब प्रश्न पूछो। जो आपका प्रश्न है पूछो। आप बताओ भाई, बस कोई बात से बताओ। मैं पूछता हूँ कि निर्विकार स्वतः सिद्ध है तो विकार हमारे क्यों आते हैं? हमने सुन ली, समझ ली, बात भी कर ली कि निर्विकार तत्व है, सिद्धांत भी ठीक है, फिर विकार क्यों आते हैं? तो निर्विकार में विकार कैसे आए?
निर्विकार में विकार थोड़ी आए हमारे,
तो
विकार जहाँ आ रहे हैं उसे समझ मार रहा है, उसको देख कर विकार मार रहा है। विकार उसके विकार उसमें आते नहीं, आए सकते नहीं, तो कभी नहीं।
अभी बिल्कुल आपके मिलती नहीं बात, विकार आना संभव ही नहीं है आपके, तो मिटना ही संभव नहीं है। मैं कहता हूँ आप शायद न हो, पर आपके प्रश्न के अनुसार निर्विकार संभव ही नहीं है, विकार आना संभव ही नहीं है।
प्रश्न ये नहीं है,
तो
निर्विकारता स्वतः सिद्ध है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि और साधकों के लिए, अपने लिए, सबके लिए मैंने कहा है,
और सब साधकों के सामने विकार आते हैं, फिर निर्विकार कैसे मान रहे हो? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका कि विकार जो प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहे हैं, फिर निर्विकार तत्व है, ये कैसे माने? ये प्रश्न है आपका। प्रश्न पूछो साहब।
पूरे प्रश्न को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा मेरे को समय, पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ देते
हैं, समय बर्बाद होगा।
आपके आप नहीं कह सकते, पढ़ने से क्या होगा?
मैं तो आप तरह तरह से, अरे मैं तो तरह तरह से, मैं तो तरह तरह से कहता हूँ ना,
कई ढंग से आपके प्रश्न को रख दिया है, जितना तो आपका इसमें है ही नहीं लिखा हुआ।
प्रश्न खत्म हो गया,
इनकी इच्छा है महाराज जी, क्या करें?
पढ़ लो।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सब सुख राशि, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जीव इन विशेषणों से स्वतः सिद्ध है, इसके लिए अपने कुछ करना नहीं है, ऐसा मानकर चुप हो जाओ, यह सत्य है। तत्व की प्राप्ति
ये मूल में गलती है, ऐसा मान करके और आप हो जाओ, ये नहीं है मेरा कहना।
कल
कहा ही नहीं मैं, ये मैंने कही नहीं है, मैं कहता ही नहीं हूँ।
नहीं है ऐसा, सुनते मानते फिर भी प्रश्न बनते रहते हैं, अभी सुना समझा पर यह स्थिति स्थायी नहीं रहती, इसका क्या कारण है? इससे ऐसा लगता है अवश्य ही कोई न कोई कारण है, हम जानते हुए भी जो नहीं करना चाहिए उसे करते रहते हैं, अभक्ष भक्षण चोरी कपट बेईमानी धोखाधड़ी, यह जो स्वतः सिद्ध निर्दोषता में अपनी लाई हुई सदोषता छोड़नी है या नहीं, कारण यह असत बोलकर इसे हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसा मानकर करते रहे, जैसा कि प्राय सभी साधक अधिक या कम करते रहते हैं, तो यह जान कर कि तत्व स्वतः सिद्ध है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, या इस निर्दोष तत्व की अनुभूति के लिए आगंतुक दोष को छोड़ना है, या इस आगंतुक दोष के छोड़े बिना अस्थाई अनुभूति का रहना संभव है क्या? आगंतुक जो दोष है इनको छोड़े बिना अस्थाई तत्व का अस्थाई रहना संभव है क्या? मैंने ये कहा था, जो हमारे में
तत्व का तो स्थायी तो बता रहे हैं, तत्व का
हाँ वो तो है ही,
अनुभूति है ना, अनुभूति निषेध कर ही लिया,
हाँ अनुभूति माने अस्थाई नहीं रहती,
तो उसको उपाय पूछो।
कोई उपाय न, वही उपाय पूछा गया है कि जो हम करते आते हैं गलतियां उनको छोड़ना है कि स्वतः सिद्ध जो है इसमें स्थिति रख करके वो हमसे छूटे न छूटे।
तो असली उसको छोड़े वो साधु में नाशवान चीज का अंतकरण के महत्व है, ये है मूल तत्व। नाशवान चीज की सत्ता और महत्ता आपने पकड़ रखी है, उसके आधार पर ये दिशा है। अब पकड़ो ये चीज उत्पत्ति विनाश वाली है, ये बात जानते हैं नहीं जानते हैं ना। अच्छा उत्पत्ति विनाश वाली है उसको है मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानो इसको है ऐसा माने, नित्य निरंतर है ऐसा मानते हैं कि ये नहीं है मिटने वाला नहीं है, ये बात है नहीं मैं है मैं कौन सी चीज है ये नहीं इसको बताओ इस चीज को जुड़ा हुआ नहीं मानता मैं पूछ रहा हूँ ये चीज है कि नहीं है क्या है ये वो विभाग है। एक तो है का विभाग एक नहीं का विभाग है, तो इसको है कहोगे नहीं कहोगे क्या कहोगे?
अभी तो वर्तमान में तो है ही कहेंगे इसको,
वो है ही कहोगे वर्तमान में है पक्की बात है। अब स्थिर रहना इस बात पर, इस बात पर पक्का स्थिर रहना है ना, ये है ना। अच्छा है तो ये जैसी बनी थी वैसी है, फर्क पड़ा है?
नहीं फर्क पड़ा है।
तो बस है कैसे है मुझे फर्क पड़ता नहीं, है में फर्क पड़ता है कैसे हुआ? ना भाव भी देते सत्य सत का अभाव होता ही नहीं, तो ऐसे कमी इस वक्त क्यों आई है जनो? कमी आई तो है कैसे?
कमी तो आई है,
कमी आई है ना, तो है नहीं है ये है दिखता है।
तो यह है ये कहते हैं ना है इसमें साथ में जुड़ा हुआ है ना,
तो है जुड़ा हुआ है तो है को आप आदर दोगे तब तक ये अवस्था आपकी रहेगी ऐसी। कितने प्रश्न करो तो उसमें फालतू नहीं होगा, आपके मन में जो चीज है कि ये है चीज तो है ही रहेगी ना, कैसे होगा? नहीं आई कब्जे में, इस वास्ते मैं चार बात बताऊं, चार बात को आप मनन करो कि ये एक दिन था जो टोपी नहीं थी और एक दिन आएगा नहीं रहेगी, ये सच्ची है ना?
ये तो पूरा समझ में
आया। तो ये टोपी सच्ची हुई कि नहीं बना सच्चा हुआ?
नहीं बना सच्चा हुआ।
तो पहले नहीं थी पीछे नहीं रहेगी। तीसरी बात है कि ये है उस अवस्था में भी बदल रही है, तो बदल रही है जो नहीं बना सिद्ध हुआ ना, पहले नहीं थी नहीं बना सिद्ध हुआ, पीछे नहीं रहेगी नहीं बना सिद्ध हुआ, और वर्तमान में भी नहीं बनाएगी जो बनी थी वैसे तो नहीं है, आज नहीं है तो नहीं पड़ा, वर्तमान में सिद्ध हुआ तो है पड़ा सिद्ध हो सकता है क्या किसी तरह से? किसी तरह से है पड़ा सिद्ध हो सकता है?
हो सकता है
ना, कैसे हो सकता है वो बताओ आप, बस अब ठीक आ जाएगा। कैसे हो सकता है इसका है पड़ा, कैसे होगा
है पड़ा? नहीं जो उसके साथ है पड़ा जुड़ा है उसको मैं क्या बोला हूँ, वो तो है पड़ा है।
अच्छा है पड़ा क्या किया तो भी बस में से हुआ, अभी तो आपने है स्वीकार किया,
अभी तो इसको नाशवान स्वीकार किया।
हाँ तो स्वीकार किया, देखो मेरी बात ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो पहले नहीं थी और पीछे नहीं रहेगी सच्ची है, और वर्तमान में भी है जैसी की तैसी रहती है बदलती है?
नहीं बदलती है।
तो पना कहाँ हुआ, किस जगह है पड़ा वो बताओ, पहले है पड़ा है पीछे है पड़ा है वर्तमान में है पड़ा है पड़ा कहाँ है?
इसमें तो दिखता है खाली नाश नाश है, इसमें तो खाली नाश नाश दिखता है, नहीं
है नहीं, ये सिद्ध होती है। तो ये अब शंका क्या रही, ये नहीं बना सिद्ध होता है तो ये है संसार का नमूना, सैंपल होता है, नमूना होता है ना, बानगी। आप क्या कहते हैं, आप भसम पता नहीं क्या कहते हैं,
ढेर में
चीज दे
रहे
नमूना समझते,
नमूना समझते नमूना, आपकी भाषा में जानता नहीं हूँ। तो नमूना है तो किस बार नमूना है, संसार का है कि नहीं नमूना, तो नमूना में पता लगेगा कि मात्र संसार ऐसा है, माल का पता लग जाएगा सामू संसार ऐसा है। तो पहले संसार नहीं था, फिर संसार नहीं रहेगा, और बदल में वर्तमान में भी संसार रहता नहीं, बदलता है। तो बदलना पड़ना न होना पड़ा ही सिद्ध हुआ, बदले में न पड़ना सिद्ध हुआ, पहले भी नहीं पड़ा सिद्ध हुआ, पीछे भी न पड़ा सिद्ध हुआ। अरे है पड़ा हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, है पड़ा कैसे होगा, तो है पड़ा कहाँ से आया। तो जो हो क्या आप कहते हो है, वो है पड़ा कहाँ से आया बताओ, है मान लो जी कैसे सूटे बोलो, सुनने से और सीखने से नहीं होता है ये, सुनने से सीखने से सिखाने से ये तत्व तो नहीं होता है, तत्व तो का अनुभव करने से होता है, है दिखता है। तो है आंख से दिखता है, बुद्धि से दिखता है, आंख ठीक है बुद्धि ठीक है,
आंख से दिखे बुद्धि से दिखे,
आंख से दिखे बुद्धि से दिखे,
आंख से दिखता है बुद्धि से दिखता है।
महाराज का प्रश्न है कि आपने है जो है आंख से दिखता है, आंख से
बुद्धि से,
बुद्धि से विचार नहीं आता कि है नहीं
बस। अच्छा बुद्धि बड़ी है कि आंख बड़ी है,
बुद्धि बड़ी है कि आंख का निर्णय बड़ी है,
बुद्धि का है, बुद्धि का है। तो नहीं बने से हुआ ना,
सिद्ध हुआ
ना, सिंह
हुआ
ठीक है। तो कैसी बात करते हो, बुद्धि का आसन करते हो, राम से दिखता राम से दिखेगा, मैं कहता हूँ जैसे दर्पण में तेरा दिखे तो दिखता है, उस दिखते हुए भी दर्पण में है क्या, कहीं नहीं दिखता है ना, कैसे नहीं कह दिया, नहीं कैसे प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं, तो नहीं कैसे कहते हो, इसी की माँ से कैसे गिरी जाए। तो दिखता है वो ठीक है, तो नहीं है वो ठीक है, तो दिख रहे क्या आदर है, आप दिख रहे आदर करते हो, आप दिख रहे बात तो सुनता न दिखने की, दिखने का वेदांत का श्रवण करते हैं और मनन करते हैं विषयों का, और निर्ध्यास करेंगे संसार की सत्ता का, साक्षात्कार होता है दुखों का, ये चार भूमिका है, श्रवण मनन निर्ध्यासन तत्व साक्षात्कार, चार भूमिका है, श्रवण मनन निर्ध्यासन साक्षात्कार। तो श्रवण में तो ठीक है, श्रवण तो शास्त्र का है, और मनन विषयों का है, निर्ध्यास सत्ता का है, साक्षात्कार दुख का है। आप भी इसकी बात करते हो, विचार आश्चर्य आता है कि बुद्धि का निर्णय ठीक है, आंख का निर्णय ठीक है, जी तो बुद्धि के निर्णय का आदर करना है, तो आंख के निर्णय का आदर करना है। आपको साधन करना है तो आंख का निर्णय बढ़िया नहीं है, इंद्रियों का निर्णय, इसमें बुद्धि का निर्णय तेज है, और बुद्धि से निर्णय भी अगारी विवेक का तेज है, और विवेक से बहुत तेज है, ये क्रम है ज्ञान इसका अनुभव। आप महत्ता नेत्रों को देते हैं, बहुत समय हो गया भाई, नेत्रों को देते हैं कि बुद्धि को देते हैं, विवेक को देते हैं, तत्व ज्ञान को देते हैं, आप महत्व किसको देते हैं? आपके तो काम वो आवेगा जिसको आप महत्व दोगे। ये पड़े रहो अपने घर पर घर रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप जिसको महत्व दोगे वो आप काम आवेगा। बोझ को देते हो तो फिर पहले तो आंख को रद्दी करो, बुद्धि रगाड़ी, आंख रगाड़ी, बुद्धि को रद्दी करो, बुद्धि ने रद्दी आंख को रद्दी करो, और बुद्धि से विवेक को लाओ, बुद्धि को रद्दी करो और विवेक को रद्दी करो, बोध को लाओ, तब बोध होगा। कैसा से करो, अगर महत्व दो नेत्रों को तो कैसा होगा?
अरे
क्यों भाई, ये समझ में आई है नहीं? बस ठीक है, घट रहा है तो निर्दोष घट रहा है। तुम बुद्धि को प्रधानता देते हो, नेत्रों को प्रधानता, बुद्धि देते हो तो नेत्र कैसे घटे, कैसे दोष कैसे घटे? फिर
यही तो
आज आप होते है पूरी, तो वो जो नेत्रों को प्रधानता देते हो भाई, तुम कह देते हो बुद्धि प्रधानता देते हो, नेत्रों को प्रधानता देते प्रधानता बुद्धि को नहीं देते। विवेक तो बहुत दूर रहा, बोध तो बहुत दूर रहा। प्रधानता इंद्रियों को दी जाती है, इंद्रियों की प्रधानता ये दशा रहेगी। कितना ही सुन लो, अपने कितना ही पढ़ लो, कितना ही विचार कर दो, इंद्रियों की प्रधानता ये दशा रहेगी। बरसों तक पढ़ते लोग चोरी करना, डाका डालना, दूसरे का हक लेना, ये बढ़िया नहीं है। पर आश्रम में क्या आता है? आश्रम चोरी आ जाती है, डाका जैसे और अपना अन्यायपूर्व ले लेते हो, आश्रम ऐसा है ना, अन्यायपूर्व भी ले लेते हो कि नहीं लेते? बिल्कुल जानते हुए अन्याय ले लेते हो ना, अन्याय पूर्व भी कर लेते हैं, तो अन्याय खराब है, माना कहा है? ये तो सुनी है बात है, सुनी बात काम नहीं आ रहा। हाँ जी,
प्रश्न के बाद पहले भी आपने यही कहा, सुनी सुनाई बातें हुई कुछ नहीं।
मेरे बारे में मान तो बोले, मैं बहुत वर्ष हुए बोलते हैं, मेरे को बोलता नहीं आदमी, मेरे स्पष्ट पकड़ने बात ये बोलता है, यहाँ बोलता है। अब बोलते क्या है कि प्राय ये बियाणी बोले जो ही बोले है, ये कैसे बोले कि भाई मैं तो सब बरस हुए सुनता, मेरी बात में बीच में अबार बीच भी ऐसी हो रही थी कि इतना वर्ष हुआ सत्संग करते हुए, इतना वर्ष हुआ नाम जप करते हुए, इतना वर्ष हुआ हमारे शास्त्र पढ़ते हुए, इतना वर्ष हुआ ध्यान चिंतन करते हुए, इतना वर्ष हुआ नित्य नेम करते हुए, इतना वर्ष हुआ नाम जपते हुए, फिर की हुई तो नहीं उपये कैसे? आपको क्रिया को इस प्रधान दे रहे हो, आप विवेक को प्रधान दे ही नहीं रहे हो। सत्य निर्कर्ण निरपेक्ष देते हैं, कर्णों को इस प्रधान था। अब सार क्या निकला? सार ये निकला, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इंद्रियों को प्रधानता न दें, ये सार निकला। अरे इंद्रियों के ज्ञान को प्रधानता दोगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आप जब तक इंद्रियों को प्रधानता दोगे तो बोध नहीं होगा, सत्व ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, ये सार निकला इसका। इसमें शंका हो तो बोलो। हमारे भाइयों में कई ऐसे भाई हैं जो वो सत्संग विभाग अलग है और हमारे काम धंधों का विभाग अलग है। सत्संग में झूठ नहीं बोलना सत्संग की बात है, काम में तो बोलना ही पड़ता है, बोलना पड़ा ही करेंगे, वो विभाग अलग है, ये विभाग अलग है। क्यों भाई, यही बात है ना।